ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स करके ध्यान को यहां लेकर आएंगे। कौन कौन आज सुबह 4 बजे आए थे मेडिटेशन करने? वेरी गुड। कल कौन कौन आएंगे और मंडे को कौन कौन उठेंगे? ओ, मंडे को कम हो गया। मंडे को नहीं उठना सुबह 4 बजे? और ट्यूसडे को कौन उठेगा 4 बजे? उसको ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 24 घंटे के बीच का मुहूर्त समय। इट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। आइडियाज में न्यूनेस, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन पावर, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग पावर। सुबह अमृत वेले के मेडिटेशन के बाद ऐसी चीजें माइंड पर आएंगी जो बाद में हम सोचेंगे, ये पहले कैसे नहीं सोचा मैंने इस बात में। तो वो समय बहुत पावरफुल होता है। तो यहां से जाने से पहले ये डिसीजन लीजिए कि हमें सुबह के समय को यूज करना है, प्रोवाइडेड हम रात को समय पर सो जाए। वैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से व्हाट इज द राइट स्लीप टाइम? 10 to 10 to। आजकल ज्यादातर आप सबको बहुत ज्यादा सोने के लिए कहते हैं। अच्छी बात होती है, हीलिंग होनी है बहुत ज्यादा। पहले हम नहीं सोया करते थे इतना, राइट? तो हमारे पेरेंट्स 8-8, 9-9 घंटे नहीं सोते थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो उससे भी कम सोते थे, राइट? तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ स्लीप को बढ़ाया जा रहा है? क्यों हम एक ऐसे युग में जहां लोगों के पास टाइम नहीं है, हम उनको ज्यादा सोने के लिए कह रहे हैं? क्या रीजन है? उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि जो मन सारा दिन में थकता ज्यादा है, क्या कर करके थकता है? सोच। जो मन सारा दिन में थकता ज्यादा है, फिर रात को खाना लेट खाता है, फिर उसके बाद न्यूज देखता है, फिर उसके बाद कोई सीरीज देखता है, फिर सब देखकर जब बेड में बैठता है तो फोन देखता है। वो मन बहुत ज्यादा थक जाता है और इसलिए उसको सोने के बाद ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इतने घंटे सोने के बाद भी, सुबह उठने का मन नहीं करता उनका, इसलिए हर मोबाइल पे स्नूज बटन आ गया। अब मेडिकल साइंस में इसके पीछे क्या लॉजिक है कि 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं है? ऐसे उठते हैं जैसे थके हुए हैं, सोए नहीं। और अगर आप सुबह सुबह सड़क पर देखें चेहरे, तो आजकल आई लिव इन गुड़गांव, तो गुड़गांव से दिल्ली एक लंबा एक्सप्रेसवे है 1.5-2 घंटे का, जिसपे सारे कॉर्पोरेट ऊपर नीचे इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे हैं। सुबह सुबह उस पर देखो तो अब ऐसा हो गया है, पता नहीं चलता कि सुबह का समय है शाम का, चेहरा उतना ही थका हुआ दिखाई दे रहा है। इतने घंटे सोने के बाद भी थके हुए क्यों? इतने घंटे सोने के बाद भी सुबह फ्रेश क्यों नहीं लगता? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतने घंटे सोने के बाद भी कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हैं। दिखते हैं आपको फ्लाइट पे लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, ट्रेन में, कितने भी बजे, अनलेस फोन या कुछ लेकर अपने आप को इंगेज नहीं रख रहे हैं, दे विल जस्ट फॉल ऑफ टू स्लीप। तो फॉलिंग ऑफ टू स्लीप एट एनी टाइम ऑफ द डे इज अ गुड साइन। कई बार मैं अपने साथ वाली कुर्सी पर पूछती हूँ, क्या बात, आप सोई निकल रात को? क्योंकि कई लोग टेक ऑफ के बाद से लैंडिंग तक सो लेते हैं अच्छे से, वो भी सुबह सुबह 9 बजे फ्रेश टाइम के ऊपर। मैं कहा, क्या आप सोए नहीं रात को? कहते ऑफ कोर्स सोए थे। मैं कहा, पूरी फ्लाइट सोए? कहते हाँ। मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ, तो उनको लगता है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो मेडिकल साइंस क्या कहता है, इज दैट हेल्दी? बताइए, इज दैट हेल्दी? क्या हुआ, यस और नो? तो व्हाट इज द साइन कि अगर 8 घंटे सोने के बाद मुझे फिर से नींद आ सकती है 9 बजे सुबह, तो उसका मीनिंग क्या है फिर? स्लीप डिप्राइव्ड। तो 8 घंटे सोने के बाद भी स्लीप डिप्राइव्ड, तो और कितने घंटे सोए अभी? सो वी विल हैव टू स्टार्ट टेलिंग देम, इट्स नॉट अबाउट स्लीपिंग लॉन्ग आवर्स, इट्स अबाउट स्लीपिंग डीप। उनके घंटे नहीं बढ़ाते जाने हैं सोने के, लेकिन गहरी नींद कैसी सोई जाए। और जो एक बार गहरी नींद सो लेगा, उसके बाद वो सुबह उठेगा तो वो बिल्कुल फ्रेश होगा, क्योंकि उसकी एनर्जाइजिंग हो चुकी है नींद के अंदर, और दिन में कहीं नहीं सोएगा। आप यहां देख रहे हैं सब लोग 3:30 बजे उठते हैं, यहां पर 10 बजे तक सेवा कर रहे हैं। आपको कहीं दिखे लोग ऐसे थके हुए, आधे सिर इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है, ऐसा दिखा कहीं? नहीं। और ये 2 दिन नहीं कर रहे, 30 साल से यहां है तो 30 साल से रोज कर रहे हैं। सो 30 ईयर्स से 6 आवर्स से कम स्लीप पर चल रहे हैं, 6 आवर्स से कम पे। लेकिन कभी भी बैठे बैठे सोते हुए नहीं दिखाई देंगे, और ही जब सुबह उठने का अलार्म भी होता है उससे पहले ही नींद खुल जाती है। नींद तब अपने आप खुलेगी जब डीप स्लीप पूरी हो चुकी है, और इतने घंटे सोने के बाद भी डीप स्लीप क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सारा दिन सुपर एक्टिव है, माइंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और रात को सोने से पहले उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट भर के सोते हैं वो लोग। तो फिजिकली तो वो सो रहे हैं, लेकिन माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और उसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि मेजॉरिटी लोग घर पर आकर भी फोन और लैपटॉप के साथ काम कर रहे हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू स्लीप बिकॉज दे आर वर्किंग इन देयर माइंड इन द नाइट। तो ये भी उनको आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है जो हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। सो इट्स नो पॉइंट टेलिंग देम स्लीप लॉन्ग, बिकॉज उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं है। वी हैव टू टेल देम कि डिस्कनेक्ट from work after 7 o'clock, disconnect from content after 8 o'clock. रात का खाना कितने बजे खाना चाहिए? 8 o'clock. आप कितने बजे खाते हैं रोज? यहां से जाने के बाद या जहां से जाने से पहले ही एक प्रिस्क्रिप्शन पहले अपनी बनानी पड़ेगी। जब तक अपनी प्रिस्क्रिप्शन बनेगी नहीं, खुद उस लाइफस्टाइल को डील लीड करेंगे नहीं, तब तक हम दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि दूसरा सामने से बोलेगा डॉक्टर साहब आपको क्या पता मुझे कितना काम है, आप बोलोगे हाँ मैं भी समझता हूं मुझे भी बहुत है, लेकिन आप कोशिश करना। तो इट डजंट वर्क। आपकी बात का प्रभाव हमेशा याद रखना, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एम्बेसडर ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैं। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल जी के लोगों को सिखाना है कि हम अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगर हम रात को लेट खाना खाते हैं और भारी खाना खाते हैं, फिर वो जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे डाइजेशन के लिए चाहिए वो टाइम किस में चला गया? वो भी नींद में चला गया। तो नींद में सिर्फ हीलिंग होनी चाहिए, डाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए नियम बना हुआ था कि सूर्यास्त से पहले क्या कर लो, खाना खा लो, तो अपने आप सोने से पहले डाइजेशन पूरा हो गया, 3 घंटे का काम तो वहीं बच गया। तो बनानी पड़ेगी प्रिस्क्रिप्शन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। फिर अगर डाइजेशन पहले हो जाता है और फिर सोने से पहले भारी भारी कंटेंट नहीं कंज्यूम करते, रात का खाना भारी नहीं कंज्यूम करते, हल्का खाते हैं, फिर नींद ज्यादा नहीं चाहिए होती है। वी आर वेस्टिंग टाइम बाय स्लीपिंग मोर। नींद ज्यादा नहीं चाहिए होती, अपने आप नींद खुल जाती है। डीप स्लीप जब हो जाए ना, उसके बाद आप कोशिश भी करो तो आप सो नहीं सकते, अपने आप ऐसे वेकअप करके बैठ जाते हैं। तो जब हम वापस जाएंगे और इस लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। अगर डिनर जल्दी किया, हल्का किया, कंटेंट डिस्कनेक्ट किया और समय पर सो गए, अपने आप नींद खुलेगी। और सुबह के वो जो 2-2.5 घंटे हैं उसका बहुत सदुपयोग होगा, बहुत सदुपयोग होगा। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और थोड़ा सा अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। सिर्फ रिवाइंड कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी और अपनों की। जीवन में हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं सबके लिए, अपने लिए। बचपन से आपकी अपनी भी लिखी होगी आपने, आपके पेरेंट्स ने आपकी लिखी होगी। ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बनेंगे। उस स्क्रिप्ट को देखिए और जीवन को देखिए। जैसा जैसा हम सोचते हैं क्या वैसा वैसा ही होता है? कभी कभी उतना अच्छा सोचा ही नहीं था जितना हो जाता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी मेहनत नहीं करते ज्यादा सफलता ज्यादा मिलती है, और कहीं कहीं बहुत मेहनत पर भी वो नहीं मिलती है। किसी पर बहुत विश्वास करते हैं फिर भी रिटर्न में कुछ और मिल जाता है, और किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं फिर सहयोग देते हैं। इतनी चीजें जीवन में हो रही हैं, कैसे हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो? और जब अचानक तो मन सबसे पहले ये क्यों हो रहा है? तो ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, ये जो हमारी डेस्टिनी बन रही है, वो डेस्टिनी जिसके लिए दुनिया कहती है कि प्री डेस्टिन्ड है, ये तो पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट, ये सब कौन कर रहा है? और आज अगर हमें अपने भाग्य में कुछ एक चीज बदलनी हो तो वो कौन सी बात होगी? ओम शांति। चेक किया अपनी लाइफ की जर्नी को, किस किस ने रिवाइंड करके देखा? हॉस्पिटल में तो ये सबसे ज्यादा दिखता है, किसी को सडनली पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? होता है ना ऐसा क्वेश्चन, वो डॉक्टर से पहले पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो माइंड बहुत क्वेश्चन करता है कि क्यों हुआ, और उस माइंड को हीलिंग पर फोकस करने के लिए, ताकि बॉडी अच्छे से हील हो, उस माइंड के इस वाले थॉट को साइलेंट पहले करना होता है। हम कहते हैं लाइफस्टाइल, हम कहते हैं कुछ, कहते पर मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एंड वो सिर्फ हेल्थ में नहीं, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जीवन की छोटी छोटी बातों पर हम लोगों पर उंगली रखते थे, जो हमने कल सुबह देखा कि ब्लेम गेम इज ओवर। किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इमोशंस की और बातों की? मेरे ऊपर। तो ज्यादातर हम कहते हैं इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, और कुछ जीवन में बड़ी बातें होती हैं जिसके लिए हम उंगली यहां नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए उंगली हम किस पर रख देते हैं फिर? उसके लिए उंगली हम किस पर रख देते हैं फिर? रखिए, कहाँ रखते हैं? क्योंकि हमने बचपन से सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा। पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है, Everything is happening as per God's will. बचपन से सुनते आए हैं ये, और हर बार सुना और कांध हिलाया और हां जी किया. आप स्वीकार करते हैं इस बात को कि एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल, सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? कौन कौन अग्री करता है इस बात पे कि सबसे सब कुछ जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? हाथ उठाइए अच्छे से. एक सेकेंड चेक करते हैं सर. चलो एक मिनट ये करते हैं. आपके पास एक पावर मिल जाती है आपको आपके बच्चे का भाग्य लिखने के लिए. आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? लिखिए कैसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, एक वर्ड में बताइए कैसा लिखेंगे अपने बच्चे का भाग्य. राइट लिखेंगे, परफेक्ट लिखेंगे, सुपर परफेक्ट लिखेंगे, कहीं कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे अच्छा होता है, रेजिलियंस बढ़ती है. नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे. और अगर आपके दो बच्चे हैं, एक आपका बच्चा बड़ा ही आज्ञाकारी है, आपका हर कहना मानता है, और एक बच्चा थोड़ा सा मस्ती करता है, अब दोनों का भाग्य लिखना है, किसका ज्यादा अच्छा लिखेंगे, किसका ज्यादा अच्छा लिखेंगे? दोनों का सेम अच्छा कैसे लिख सकते हैं? एक ज्यादा आज्ञाकारी है, एक थोड़ा मस्ती करता है, नटखट है, तो दोनों का कैसे एक जैसा लिख सकते हैं? एक का ज्यादा अच्छा किसका लिखेंगे? ज्यादा अच्छा किसका लिखेंगे, नटखट वाले का या आज्ञाकारी वाले का? तो टाइम तो नहीं लग रहा सोचने में आंसर ये वाला. अगर हम एज अ पेरेंट, अच्छा चलो अपने बच्चे का भाग्य छोड़ो, आपको किसी और के बच्चे का भाग्य लिखना है, कैसा लिखेंगे? अपने का तो परफेक्ट ही लिखेंगे, क्या उसमें डिस्कस करें. किसी और के बच्चे का लिखना है कैसा लिखेंगे? उसका भी परफेक्ट लिखेंगे. किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है कुछ, पर आपको पावर मिल जाए उसके बच्चे का भाग्य लिखने की, कैसा लिखेंगे? उसने आपके साथ बहुत गलत किया, चांस मिला है, कैसा लिखेंगे? अच्छा जी, मतलब हम कलयुग के अंतिम समय पर मनुष्य आत्मा, जिसके पास इतने सारे नेगेटिविटीज हैं, वाइसेस हैं, ईगो है, जेलेसी है, सब कुछ है, वो भी सिर्फ अपना नहीं दूसरे के बच्चे का भी भाग्य परफेक्ट लिखेगा, और जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके बच्चे का भाग्य भी परफेक्ट लिखेगा. लेकिन वो परमात्मा हमारा भाग्य आजकल कैसा लिख रहा है? परफेक्ट चल रहा है सबका भाग्य दुनिया में? चल रहा भाग्य परफेक्ट दुनिया में? क्या लगता है चल रहा है परफेक्ट भाग्य? इक्वल चल रहा है सबका भाग्य, सेम इक्वली परफेक्ट? सो थिंक, लेट्स थिंक. सुनी थी बात, किसी ने कही थी, लेकिन उसके पीछे कोई भाव होगा या हमने सही नहीं समझा. अगर हम बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो परफेक्ट लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, तो अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेंगे तो कैसा भाग्य लिखेंगे? बोलिए, बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कैसा लिखेंगे? परफेक्ट लिखेंगे. और हम सबका कैसा लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे. आज सृष्टि पर भाग्य ना परफेक्ट है ना इक्वल है. तो आज से एक और ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा. किस पर ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा? परमात्मा. एक सेकेंड रुक कर सोचना चाहिए, क्या भगवान हमारे साथ ऐसा करेगा? बाढ़ आ रही है, युद्ध चल रहा है, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है, ये भगवान करेगा? ये भगवान क्यों बोल रहे हैं हम फिर उसको? इतना गंदा तो भाग्य हम ना लिखें किसी का, तो वो भगवान होकर कैसे लिखेगा? वी डोंट पॉज टू थिंक. एक और बात बचपन से सुनी थी कि जैसा कर्म वैसा परिणाम. वो बात राइट है या नहीं राइट है? वो भी राइट है. अब दोनों नहीं राइट हो सकती है, मतलब मेरे जीवन में जो बातें आ रही हैं वो मेरे कर्मों अनुसार आ रही हैं या परमात्मा की मर्जी से आ रही है, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से एक होना पड़ेगा वो। इट कैन बी बोथ, ईदर गॉड इज राइटिंग द डेस्टिनी और आई एम राइटिंग द डेस्टिनी एज पर माई कर्म, दोनों नहीं हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हैं बिल्कुल। एक में पावर सारी किसकी है, उनकी है, और दूसरे में पावर सारी किसकी है, मेरी है, दोनों में से एक हो सकता है, कौन सा एक है फिर वो? कर्म हमारे इक्वल नहीं है, हम सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, और हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई गलती हम करते हैं। तो कर्म हमारे इक्वल नहीं, कर्म हमारे परफेक्ट नहीं, तो इसलिए भाग्य भी हमारा इक्वल नहीं और भाग्य भी हमारा हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा परफेक्ट नहीं। तो आज से एक बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, दोनों बातों पे ऐसे नहीं कर सकते हम, दोनों में से एक पर करना पड़ेगा। तो हमारा भाग्य कौन लिख रहा है? उंगली रखिए, आपको कल बताया था ना, इसमें हर स्पिरिचुअलिटी में हर चीज में उंगली अपने ऊपर ही रखनी पड़ती है, बिकॉज द पावर इज ऑल आर्स। तो कर्म हमारे हैं, भाग्य कौन लिख रहा है हमारा? हम। अगर चेंज करना है तो किसके पास जाना है? खुद के पास। तो आगे से भगवान को ये नहीं बोलना ये कर दो, ये ठीक कर दो, नई गाड़ी दे दो, नया क्लिनिक बनवा दो। वैसे भगवान गाड़ी दे सकते हैं क्या हमारे को? क्या परमात्मा मुझे एक न्यू कार दे सकते हैं क्या? यस और नो? डोंट नो। परमात्मा न्यू कार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हाउ मेनी फील यस दे सकते हैं, हाउ मेनी फील नो नहीं दे सकते हैं, हाउ मेनी फील नॉट श्योर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मांग के देखा नहीं? आप किसी को वो दे सकते हैं, आप किसी को वो दे सकते हैं जो जो आपके पास हो। परमात्मा के पास कार है, परमात्मा के पास है, तो आगे से कार नहीं मांगना, वो उनके पास नहीं है देने के लिए, नहीं है उनके पास देने के लिए। परमात्मा के पास क्या है? परमात्मा के पास क्या है? परमात्मा सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, क्षमा का सागर है, उसमें से जो चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन वो सब छोड़ के हम कहते नहीं, मेरे को सिर्फ गाड़ी चाहिए। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, परमात्मा का हमारे लाइफ में क्या रोल है? क्योंकि जब रोल की क्लैरिटी नहीं होती ना, तो फिर हम ब्लेम करते हैं, और कई बार सिर्फ ब्लेम नहीं करते, हम उनसे नाराज हो जाते हैं। हो जाते हैं ना नाराज? नाराज हो जाते हैं ना कभी कभी, इतना बोला फिर भी नहीं। ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं, उस शक्ति से हम अपने संस्कारों की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो संस्कारों से आपको जो अचीव करना है आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते गाड़ी दो, ट्रांसफर मेरी रोक दो। क्लियर हो गया आज से भगवान से क्या कहना है और क्या नहीं कहना? क्योंकि फिर ये नहीं बोलना एप्लीकेशन डाली, और कई बार तो ये भी बोलते हैं कर दोगे तो, हाँ रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, हाँ ओए, और फिर बोलते हैं हम वहां गए थे, हमने ये मन्नत मांगी कि ये होगा तो हम चढ़ाएंगे, हम वापस आएंगे, फिर जाते नहीं। फिर उनको कोई बोलता आप तो डिसाइड किया था अगले साल जाना है, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई फिर मैं क्यों जाऊं? तो हम भगवान के साथ के रिश्ते को भी कहां लेकर आते? इतना नीचे नीचे नीचे। परमात्मा प्यार ज्ञान और शक्ति का सागर है, आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप क्या है, आप अपने बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं, मतलब एडवाइस दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को सपोर्ट एंड पावर दे सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे का कर्म कौन करता है? आप एग्जाम से पहले पूरी रात उसके साथ बैठ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने किसको जाना पड़ेगा? कर्म तो उस बच्चे को खुद ही करना है, और कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी जब आएगा, आप साथ में बैठ सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन आप बच्चे के कर्म का कॉन्सिक्वेंस आप फेस नहीं कर सकते हैं। वो किसको फेस करना है? वो उसको ही फेस करना है। भगवान का भी हमारी लाइफ में सेम रोल है। भगवान हमें राय दे, शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कर्म हमें करना है, और जब किसी भी कर्म का कॉन्सिक्वेंस आता है उसको फेस करने के लिए भी ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, सपोर्ट देते हैं, फेस हमें करना है। इट्स एग्जैक्टली द सेम रिलेशनशिप। तो ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि एक ब्लेम गेम नहीं, और दूसरा क्या उससे लेना है उसकी क्लैरिटी। अगर हमें आज पावर मिल जाए कि हम अपने आने वाले सालों का भाग्य जाने, तो कौन कौन जानना चाहेगा अपनी डेस्टिनी? अगर नीचे वाला एक हॉल है, अगर वहां कोई आ जाए जो बैठ के बताए आपके ये होने वाला, अगले साल ये होने वाला, अगले साल ये होने, कौन कौन जाना चाहेगा पूछने के लिए? बाकी सब नहीं जानना चाहेंगे क्या होने वाला है आगे? दो तरीके का जीवन होता है, एक जानना कि आगे क्या होने वाला है, और दूसरा अपने कर्म पर फोकस करके वो भाग्य बनाना जो बनाना चाहते हैं। साइंस से आज सुबह कोई कह रहा था, पूछ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है फिर हमारी लाइफ में। जन्म पत्री किस दिन बनी? किस किस के पास जन्म पत्री है? मेजोरिटी किस दिन बनी थी? जब बच्चा पैदा हुआ उस दिन बनी थी। बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया अभी, तो वो जन्म पत्री किसकी है? वो जन्म पत्री उस आत्मा की है जो पहले बहुत सारे कर्म करके आए हैं। इसलिए आज सुबह देखा, आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी, सब कुछ पीछे छूट जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा? सिर्फ मेरे कर्म और मेरे संस्कार। तो फिर से फिंगर याद रखें, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मैं हर संस्कार जो क्रिएट करती हूं, हर सोच मेरी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। एक सेकेंड आता है, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूं, मेरे कर्म और संस्कार मेरे साथ जाते हैं, साथ नहीं जाता है। मैंने वो पैसा कैसे कमाया वो मेरे साथ जाता है। हमेशा इस बात को याद रखना है, धन पीछे रह जाएगा, बच्चों को मिलेगा, लेकिन धन कैसे कमाया वो हमारे साथ जाता है। तो मैं आत्मा यहां से निकली, गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी ने जन्म पत्री बना। सो माई लास्ट सेकेंड इन दिस कॉस्ट्यूम इज माई क्लोजिंग बैलेंस शीट, एंड फिर मैं आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती हूं, बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिन के बाद जन्म पत्री बनती है, वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब क्या पूरी जीवन उस ओपनिंग बैलेंस शीट के रेफरेंस से चलेगी? क्या पूरी जीवन उस ओपनिंग बैलेंस शीट के रेफरेंस से चलेगी? नहीं। अब उस जीवन में आकर मैं आत्मा कैसे कर्म करती हूं, उससे उसमें होने वाली बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कुछ राइट निकलती हैं और कुछ राइट नहीं निकलती है। राइट है ऐसे बात होता है ऐसे ना, कुछ राइट निकलती है, कुछ राइट नहीं निकलती। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में क्या लिखा होता है और क्या नहीं लिखा होता है। मैं आत्मा जो थॉट क्रिएट करती हूं, जो वर्ड बोलती हूं, जो व्यवहार करती हूं, वो मेरा कर्म है। कर्म बिहेवियर नहीं होता, कर्म पहले इंटेंशन होता है, फिर कर्म सोच होता है, फिर सर्म बोल होता है और व्यवहार होता है। एक बार हम रिपीट कर ले, कर्म क्या होता है? इंटेंशन होता है सबसे पहले। कर्म की पीछे का भाव, भावना कर्म से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर हमने किसी की सेवा की तो सब कहेंगे बहुत अच्छा कर्म किया, सेवा की। सेवा के पीछे का इंटेंशन क्या था? निस्वार्थ सेवा की, दूसरे को सुख देने के लिए सेवा की, रिटर्न में नाम मान शान चाहिए था इसलिए सेवा की, किस इंटेंशन से सेवा की, वो इंटेंशन पहले कर्म है। तो मेरी हर इंटेंशन, सोच और बोल मेरा कर्म है, और जो जीवन में मेरे सिचुएशंस आती हैं, लोगों का बिहेवियर आता है, मेरी बॉडी की हेल्थ आती है, प्रोफेशनल सक्सेस एंड फेलियर आता है, जो भी बातें मेरे पास सामने से आती हैं, वो है क्या मेरा, वो मेरा क्या है? मेरी सोच बोल व्यवहार कर्म है, और जो मेरे साथ होता है वो मेरा क्या है? वो मेरी डेस्टिनी है। एक बार हाथ रखेंगे, एक बॉल पकड़ेंगे अपने हाथ में, ये बॉल को जब हम फेंकेंगे ये हमारा कर्म है। एक मिनट, फर्स्ट रूल ऑफ द गेम, दूसरों को नहीं देखना कि कैसे फेंक रहे हैं। ये यहां से फिक्स करके जाइएगा मंडे मॉर्निंग। कलयुग वो समय नहीं है दूसरों के कर्म देखकर कर्म करने का, ठीक है? अब ये बॉल फेंकते समय हमें याद रखना होगा कि ये बॉल इस दीवार पर जाके हिट करेगी, और हिट करके वापस कहां आएगी? आपके पास आएगी, जिस डायरेक्शन, जिस स्पीड, जिस एंगल, जैसे आप फेंकेंगे। अब पकड़िए, सोचिए। परमात्मा हमें सिखाते हैं सोचकर बोलना नहीं है, सोचकर सोचो कि क्या ये बात सोचने लायक है, क्योंकि सोच भी एक कर्म है। वंस आई क्रिएट अ थॉट, आई हैव थ्रोन द एरो आउट, उसको मैं वापस नहीं ला सकती, वो रिटर्न आएगा ही। अब परिणाम को सोचते हुए कर्म करिए, कर्म नहीं करते जाना है ऐसा। हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस है, नॉट पनिशमेंट, कॉन्सिक्वेंस ओनली, विच मीन्स बॉल जैसी फेंकी है वैसे वापस आएगी, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब फेंकिए, अब आपने फेंक दी, ये आपका इंटेंशन है, सोच है, बोल है, व्यवहार है। अब ये बॉल क्या होगा? वापस आएगी। जब ये बॉल वापस आ रही है, ये आपकी क्या है? ये है क्या है आपकी डेस्टिनी। एक बार हाथ कर लेते हैं, इसको बार बार जीवन में करना होता है। जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा भाग्य है, जो हमारे साथ हो रहा है वो पहले किसने किया था, ये इसको हमेशा फिक्स कर लेना कि कुछ भी ऐसे अगर आ रहा है वो कभी ना कभी ऐसे गया था, ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे जाए नहीं। आपके बॉल फेंके बिना वहां से कोई बॉल आ नहीं सकती, फिक्स्ड। बोलिए एक बार, मेरे बॉल फेंके बिना कोई बॉल मेरे पास आ नहीं सकती। तो जो भी बॉल्स मेरे जीवन में आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी बच्ची बहुत 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 अच्छी हैं, वो क्यों आई इतनी सारी अच्छी, वो क्यों आई इतनी सारी अच्छी 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 क्यों आई? बोलिए, अच्छे से बोलिए, क्यों आई इतनी अच्छी? क्योंकि मैंने अच्छी बॉल फेंकी थी, बीच में एक थोड़ी सी मुश्किल वाली आ गई, वो क्यों आई? बोलिए, ये जीवन भर के लिए फिट करना है, इसलिए बोल लीजिए एक बार, क्यों आई मुश्किल वाली? क्योंकि मैंने फेंकी थी। तो ब्लेम गेम बंद एंड टेकिंग कंप्लीट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थर्ड एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मुश्किल बॉल मेरे जीवन में आ रही है, अब ये नहीं सोचना क्यों आया, कैसे आया, क्या बोलना है तुरंत अपने आप को, फेंकी थी, आ गई, अब क्या पावर है मेरे पास जब वो वाली मुश्किल वाली आ रही है? जब वो मुश्किल वाली बॉल आ रही है, कोई हमें कहेगा दिस वॉज प्री डेस्टिंड इसलिए आ रहा है, कोई कहेगा आपके जन्म पत्री में लिखा ही था इसलिए आ रहा है, तो जन्म पत्री किसकी साइंस है, कौन सी बॉल हमारे जीवन में आने वाली है, ये उसकी साइंस है। और ये क्यों कोई बता सकता है, क्योंकि वो बॉल वही है जो पहले फेंकी गई थी, वो आ रही है तो वो हमें बता देते हैं, 5 साल के बाद ये वाली बॉल आएगी, 10 साल के बाद ये वाली बॉल आएगी, 20 ईयर्स के बाद ये वाली बॉल आएगी, ये उसकी साइंस है। जब वो बॉल आ रही है, अब हर कोई पावर है क्या? एक मिनट, आप खड़े होंगे सिस्टर। कल हमने देखा कि मैंने यहां से इनके साथ गलत तरह से बात की, अब बॉल का डायरेक्शन इनके कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, ठीक है, आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां से मैं इनके साथ गलत बिहेव कर रही हूं, सबके सामने कर रही हूं, बार बार कर रही हूं, रोज कर रही हूं। इनके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन, मतलब आप सबके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में है, करिएगा कौन से डायरेक्शन में आपके लिए बॉल ऐसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम कहते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर, आंसर बोलिए ना, ये बोलना है। आंसर, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर, मैंने ये बॉल पहले फेंकी थी, फुल स्टॉप। अब आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, अच्छी नहीं है। लेकिन जब भी कोई बॉल आपके पास सामने से आएगी, आप एक थॉट क्रिएट करेंगे या नहीं क्रिएट करेंगे? बहुत सारी थॉट्स क्रिएट करेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, बिहेव करेंगे। जो अब आप सोचेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे वो क्या है? जो अब आप सोचेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे वो क्या है? वो आपकी नई वाली बॉल है। जो आपके पास आ रही है वो क्या है? वो आपकी पुरानी फेंकी हुई वाली बॉल है। दोनों में से पावरफुल कौन है? दोनों में से पावरफुल कौन है, पुरानी फेंकी हुई बॉल या जो बॉल आप अभी फेंकेंगे? ऑलवेज रिमेम्बर, उस जन्म पत्री में कुछ भी लिखा हो, कितनी भी मुश्किल बॉल लिखी हो के वहां से आ रही है, पावर आप अब जो बॉल फेंकेंगे उसमें है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि कौन सी बॉल आने वाली है, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि अब कौन सी बॉल फेंकनी है। सिंपल, हम यही सीख रहे हैं ना कल से, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। इसलिए कल हमने देखा कि अगर मैं उनके साथ नेगेटिव बिहेव कर रही हूं, उनको क्या करना चाहिए मेरे साथ रिटर्न में। कल क्या क्या ऑप्शंस देखे थे, जितना जोर से मैंने बोला उसके जो ज्यादा जोर से, अगर वो उससे ज्यादा जोर से बोलते उनके इस बार वाली बॉल क्या हो जाएगी? पहले वाली गलत आ रही है, ज्यादा भी जोर से चिल्लाया तो अब आप कौन सी वाली बॉल फेंक देंगे? और गलत फेंक देंगे। देख रहे हैं कार्मिक अकाउंट क्यों उलझता है, क्यों उलझता है कार्मिक अकाउंट? क्योंकि जब हमारे पास एक गलत आती है हम फिर से गलत फेंकते हैं। गलत इज नॉट नेसेसरीली जोर से चिल्लाना, गलत इज डर, गलत इज चिंता, गलत इज दुख, एनी बॉल विच इज अ लोअर एनर्जी बॉल। फिर हमने देखा दूसरा ऑप्शन कि जोर से नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। फिर हमने देखा क्षमा कर सकेंगे। फिर हमने देखा क्या भेज सकेंगे, ये मुझे दुआ भेजेंगे। क्यों दुआ भेजनी है मुझे, क्यों दुआ भेजनी है मुझे, क्यों भेजनी है? रिमेम्बर, आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने कर्मों के हिसाब किताब को बदल रहे हैं। आप अपने प्रेजेंट कर्मा की क्वालिटी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पावर है। और जैसे ही अब इनके पास जो बॉल आई वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अभी रिस्पॉन्स चेंज कर दिया, इन्होंने दुआएं देनी शुरू की, तो इस बॉल का इंपैक्ट इनके ऊपर, इस बॉल का इंपैक्ट इनके ऊपर। अब आपकी जन्मपत्री आपको बता देगी कि जब आप माउंट आबू जाएंगे आपके साथ बहुत एक गलत चीज होने वाली है। वो राइट बोल रही है, लेकिन डेस्टिनी वो नहीं होती जो आपके साथ होने वाली है। डेस्टिनी वो होती है कि जब वो होता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। तो वो कोई आपको बताएगा कि आपके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन उन्होंने दुआ दे दी तो उनके साथ कुछ गलत हुआ? उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन को भी क्या बना दिया, क्या बना दिया, सहज। तो वो बोलेगी इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, हाँ उन्होंने गलत किया बट इट वॉज फाइन, आई मैनेज्ड इट। इसलिए बार बार क्या होने वाला है ना उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे माइंड में पहले चली जाती है तो वो हमारी सोच को क्या करना शुरू कर देती है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या होने वाला है, थैंक यू, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट है जब होने वाला है तो तब मैंने क्या करना है, उसकी पावर मेरे पास होनी चाहिए। रेडी चेंज करने के लिए बॉल, रेडी चेंज करने के लिए बॉल, यस, कौन कौन रेडी हो गया बॉल चेंज करने के लिए? अब इन्होंने जब ये खड़ी हुई और मैंने यहां से नेगेटिव बॉल फेंकी, तब इन्होंने थॉट क्रिएट किया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो साथ वाले ने इनको बोला आपने ही पहले फेंकी थी इसलिए वापस आई है। तो इन्होंने मुड़ के कहा पहले कैसे फेंकी थी, पहली बार मिल रहे हैं, पहले कब फेंक दी, पहली बार मिल रहे हैं, और मैं तो इनका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, मेरी तरफ से तो कोई नेगेटिव इनके पास गया ही नहीं, इन्होंने क्यों नेगेटिव फेंका। अगेन डबल क्वेश्चन मार्क। बहुत लोग हमारे जीवन में होते हैं जिनके साथ हम सब कुछ अच्छा 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 कर रहे होते हैं और फिर भी वहां से कौन सी बॉल आ जाती है, आती है कि नहीं आती कभी ऐसा, तो हम कहते हैं बट मैंने तो कभी भी नहीं उनके साथ गलत किया, या इनको तो मैं पहली बार मिल रही हूं, या इनके लिए तो मैंने हमेशा अच्छा सोचा, फिर यहां से कैसे नेगेटिव आ सकती है। तो याद रखना है रिश्ता किसके और किसके बीच है, रिश्ता किसके और किसके बीच है, आत्मा और आत्मा के बीच है। क्या मैं इनसे आज पहली बार मिल रही हूं, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। बॉल सिर्फ तब नहीं आएगी जब हम उसी कॉस्ट्यूम में होंगे। कल जब ये मिली थी इनकी ड्रेस अलग थी, आज जब ये मिल रही हैं इनकी ड्रेस अलग है, लेकिन कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा जैसे ही ड्रेस चेंज हो गई? नो। अब अपने सारे लोग देख लो अपने लाइफ के अंदर, इनमें से किसी से भी आप फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं, फैमिली आप फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं, पहले भी मिले थे अभी भी मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी मिले थे अभी भी मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से मिलेंगे। डिवोर्स लेके अलग होना कार्मिक अकाउंट को क्लोज नहीं करता है, क्लोज नहीं करता है। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, हर एक से हम फिर मिल रहे हैं, जो भी हमारे क्लोज कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो भी हमारे क्लोज कार्मिक अकाउंट्स हैं। इसलिए हर कार्मिक अकाउंट में पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम उस कार्मिक अकाउंट की एनर्जी को क्या कर दें, क्या करें, रिजॉल्व करें, ठीक करें, सॉल्व करें, गांठों को खोलें। जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूं मैं कैसे जाऊं आगे, कैसे जाना चाहिए आगे, कैसे जाना चाहिए आगे। आपको पता है अंतिम संस्कार करके जब आते हैं तो वो पंडित जी एक डंडी देते हैं ऐसे छोटी सी तोड़ने के लिए वहां पर, उसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा इनके साथ कार्मिक अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। वो सिंबॉलिक है, वो हमें मीनिंग सिखा रहा है कि हर एक के साथ अपने कार्मिक अकाउंट को क्या करें, सेटल, कोई भी गांठे नहीं लगनी चाहिए, हम फिर मिलेंगे। इसीलिए क्षमा क्यों करें, क्षमा क्यों करें, किसको क्षमा कर रहे हैं एक्चुअली। अगर मैंने इनके साथ गलत किया तो मैंने तो गलत करने का कर्म कर लिया, वो मेरा कर्म है। ये अगर मुझे कहती है आई फॉरगिव यू, तो ये एक्चुअली किसको फॉरगिव कर रहे हैं, किसको फॉरगिव कर रहे हैं। फॉरगिवनेस कभी दूसरे को फॉरगिव नहीं कर रहा होता, फॉरगिवनेस हमारे अंदर की रिजेंटमेंट को, हमारे अंदर की हर्ट को, हमारे अंदर के दर्द को क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। तो हम एक्चुअली किसके लिए फॉरगिव कर रहे हैं, हम खुद के लिए। शाम को देखा कि कोई भी सिचुएशन है जो दिख रहा है वैसा नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं वैसा सोचना। तो क्या होगा, एक मुश्किल बॉल आ रही है लेकिन जो आ रही है मैंने नहीं सोचा, मुझे जो देखना है वैसा सोचा, तो मेरा कर्मा का लेवल कहां चला गया, मेरा लग गया हाई चला गया। जैसे ही मेरा कर्मा की बॉल का एनर्जी लेवल हाई चला जाएगा, मेरी डेस्टिनी क्या हो जाएगी, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। सारी पावर किसके पास आ गई, सारी पावर किसके पास आई। एक मिनट आंख बंद करिए, या किसी को भी जिसके साथ कोई गांठे बंधी हुई है, कुछ भी, पास्ट, चाइल्डहुड, अभी, कोई भी जिसके साथ लगता है ये मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, सबसे पहले उनको समझिए और समझिए कि ये हुआ क्यों है। ये गलती उनकी नहीं है, ये हम दोनों ने मिलकर पास्ट में कुछ किया है और इसीलिए हम दोनों आज सामने सामने इस एनर्जी के साथ पहुंचे हैं। सबसे पहले जो आपके साथ अभी कुछ सही नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे क्षमा मांगिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम दर्द देकर आए हैं, उसी का तो रिटर्न आया उनसे. आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन सम टाइम इन द पास्ट, मुझे याद नहीं है. सबसे पहले क्षमा मांगना है. दूसरा, अभी जो वो कर रहे हैं हमारे साथ, उसके लिए उनको क्षमा कीजिए. आई फॉरगिव यू. तीसरा, एक थॉट क्रिएट करते हैं जो हमारा न्यू कर्मा होगा. अभी पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, मतलब ये जो पुराना हमारा एनर्जी एक्सचेंज इस तरह से चल रहा था मुश्किल वाला, हम संकल्प कर रहे हैं कि ये पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है. आज से एक नया कार्मिक अकाउंट मेरी तरफ से आपके लिए. दुआएं, शुभकामनाएं, प्योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स. फिर से रिपीट करते हैं, पुरानी गलती के लिए क्षमा. आज आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं. पास्ट कार्मिक अकाउंट ओवर. आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, प्योर विशेस. और जैसे हमने ये वाली चार नई बॉल फेंकी है, हमने अभी चार थॉट्स मतलब चार न्यू कर्मा, जैसे हम ये हायर एनर्जी का कर्मा बॉल फेंक रहे हैं, वो वाइब्रेशन उन तक जाएगी और जो पुरानी चोट थी उसकी वो दवा बनने शुरू हो जाएगी. इसीलिए दुआ दवा का काम करती है. दुआ कार्मिक अकाउंट को चेंज कर देती है. कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, कोई भी गांठे नहीं होनी चाहिए. सामने वाला रिजॉल्व करे ना करे, हमें अपनी तरफ से रिजॉल्व करके अपने मन चित्त को साफ करना है, ताकि मैं आत्मा अपनी इस जर्नी पर भी लाइट रहूंगी, हैप्पी रहूंगी, बोझ मुक्त रहूंगी, और जब मैं आगे जाऊंगी तो भी लाइट जाऊंगी. किस किस को मिला कोई कार्मिक अकाउंट जिसको ठीक करना है? मिला कार्मिक अकाउंट जो ठीक करना है? बस इसको थोड़े दिन के लिए ना और रिपीट करना होगा. ऐसा एक बार करने से नहीं होता है, लेकिन थोड़े दिन के लिए इसको रिपीट करना है. अगर हम ये नहीं करते तो हम ऑपोजिट कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया. इवन इफ शी क्रिएट्स वन थॉट, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इट्स नॉट अ हैप्पी थॉट, तो फिर से कौन सी कर्मा बॉल क्रिएट हो गई. हम इतना सोचते हैं सारा दिन, हजारों थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हजारों थॉट्स हमारी कर्मा बॉल है. इसीलिए जितने भी रिश्ते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली, ऑलवेज रिमेम्बर ईच वन ऑफ अस इज अ सोल ऑन अ जर्नी. हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम पहले मिल चुके हैं, हम अभी मिल रहे हैं, हम फिर से मिलेंगे. आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराते हैं लोग, ये देखने के लिए कि पहले क्या किया था हमने ऐसा, या हमारा उनके साथ पहले हिसाब किताब क्या था ऐसा. क्योंकि जब उनको दिख जाता है कि हमारे साथ ही हमने कुछ किया था, तो उनको अभी हैंडल करना इजी हो जाता है. लेकिन हमें इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. हमेशा याद रखना है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना. प्रकृति का नियम है कि नए कॉस्ट्यूम में आने के बाद हमें पुरानी बातें क्या हो जाती हैं, भूल जाती हैं. ये नियम है प्रकृति का. प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाना. जो फाइलें शट डाउन हो चुकी हैं, उन फाइलों को फिर से खोलना नहीं होता है. लेकिन जब कुछ होता है तो पता होना चाहिए, हाँ मेरा था, अभी मुझे चेंज करना है अपने कर्मा को. उसको जाकर देखना क्यों है कि क्या था. सो नेवर गो अगेंस्ट नेचर. नेचर ने कुछ किया है वो हमारे लिए सही है, तो वो राइट है. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली जाकर पूछने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारे पास अब जो पावर है उसको पूरी तरह से यूज कर लें. अब कौन सी पावर है, कौन सी पावर है अब हमारे पास? मेरा शरीर बीमार होता है. मैंने कहा पर मेरी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल हेल्दी थी, क्यों हुआ? आई अंडरस्टैंड इट्स अ पास्ट कार्मिक अकाउंट. क्यों हुआ पे टाइम वेस्ट करना नहीं है. अब सिर्फ क्या करना है, लाइफस्टाइल भी ठीक रखनी है और साथ साथ क्या करना है, कर्मा बॉल कहां से क्रिएट हो रहा है, सोच भी ठीक रखनी है, ठीक हो जाएगा. कुछ भी जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही कर्म का परिणाम है. एंड परिणाम इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. परिणाम जस्ट मीन्स इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एनर्जी. इट कैन बी एनी क्वालिटी कॉन्सिक्वेंस, इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस. जो बहुत अच्छा है उसके लिए शुक्रिया कीजिए, और जो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए क्या कीजिए, चेंज कीजिए. आ गया अपना कर्मा बॉल चेंज करना. और कल जो हमने किया था संकल्प, दैट इज एक्चुअली द राइट कर्मा बॉल. आज सुबह साक्षी ने हमें क्या सुनाया, क्यों इनके साथ एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ था साक्षी, एक्सीडेंट कैसे हो गया था, कोई और भी इन्वॉल्व था उसके अंदर. अच्छा, यू डोंट हैव द मेमोरी, इट गॉट डिलीटेड दैट टाइम. देखो याद ही नहीं है कि कार्मिक अकाउंट क्या था, डिलीटेड. क्यों हुआ उनके साथ एक्सीडेंट, चलो चलो बहुत इजी है, क्यों हुआ था, पास्ट कार्मिक अकाउंट, सिंपल है ना साक्षी, क्यों हुआ एक्सीडेंट, पास्ट कार्मिक अकाउंट. अब क्या किया, अब क्या किया, पावर किस पे रखी सारी, प्रेजेंट कर्म, डेस्टिनी चेंज्ड. कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, कुछ सिचुएशंस चेंज नहीं होती हैं. सिचुएशन कार्मिक अकाउंट नहीं है, मन की स्थिति में कितनी सफरिंग हो रही है वो हमारा कार्मिक अकाउंट है. कुछ सिचुएशंस हम चेंज नहीं कर पाते हैं, कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं. सिचुएशन न भी चेंज हो पाए लेकिन राइट कर्मा कहां क्रिएट करना है, यहां के मन की स्थिति उस सिचुएशन के प्रति कैसे रखनी है, हाईएस्ट कर्मा इज हियर. अगर उसी सिचुएशन के लिए हम वरी, चिंता, फियर, डर ये क्रिएट करते जाएंगे तो हमारी हर कर्मा बॉल किधर चली जाएगी. इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है. हम कलयुग के अंतिम समय में चल रहे हैं, अनेक जन्म क्रॉस करके आए हैं, हर एक को बार बार मिले हैं, बहुत सारी कर्मा बॉल्स एक्सचेंज हो चुके हैं. अगर कभी टीवी का सीरियल जो पहले आते थे ना, लंबे लंबे चल रहे हैं, 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, लास्ट एपिसोड में क्या होता था, लास्ट एपिसोड में क्या होता था सीरियल के, अगर कोई बैठकर लास्ट एपिसोड देखे आपके साथ और उसने कोई और एपिसोड नहीं देखा और आप शुरू से फर्स्ट एपिसोड देख रहे थे और वो वाला व्यक्ति सिर्फ लास्ट एपिसोड आपके साथ बैठकर देखे, उसको समझ में आएगा कुछ, क्या बोलेगा वो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, अब बैठ जा, उसने ऐसा किया था उसके साथ पहले एपिसोड में. कहानी किसको समझ में आती है, कहानी किसको समझ में आती है, जिसने पूरे सारे एपिसोड देखे थे. इसीलिए जैसे ही ये ज्ञान समझ में आता है, हमारा जीवन एक एपिसोड का नहीं, वो तो सिर्फ इस शरीर में जीवन एक एपिसोड का है, आत्मा तो एक लंबी सीरियल है, इतने एपिसोड क्रॉस करके आ गई है और इतने सारे एपिसोड में बहुत सारे सीन्स आए थे, बहुत सारे डायलॉग्स आए थे, बहुत सारे लास्ट एपिसोड में सारे सीन्स का क्या हो रहा होता है, क्लोजर, हर एक की स्टोरी को क्लोजर मिलता है. और इसीलिए लास्ट वाला एपिसोड हमेशा क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे 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 फास्ट फास्ट होता है. दैट इज टूडेज युग, अचानक 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 कुछ भी हो रहा है, ऐसे 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 क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्लोजर ऑफ मेनी कार्मिक अकाउंट्स, क्लोजर ऑफ मेनी कार्मिक अकाउंट्स. और इसीलिए इस लास्ट एपिसोड को फेस करने के लिए ताकत चाहिए. चाहिए ताकत के नहीं चाहिए, चाहिए ताकत ना, चाहिए ताकत, इसलिए इसको पावर बनाना है. तो ज्ञान और योग हमें क्या सिखाता है, हर कर्म कैसे राइट करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये सिखाता है कि जो पहले का किया हुआ कर्मा बॉल आ रहा है उसको कैसे फेस करना है. आता है अचानक ना, आता है ना अचानक, अचानक कोविड आया, दुनिया ने एक शब्द क्रिएट किया अचानक। आप शिव बाबा की मुरलियां सुनेंगे, परमात्मा के जो महावाक्य है 1937 से मुरली में वो लिखा हुआ है, बच्चे अचानक होगा। अचानक वर्ड इज समथिंग वी रीड ऑलमोस्ट एवरी डे, अचानक अचानक। सो दिस इज अ क्लोजर टाइम। द वर्ल्ड इज साइक्लिक, टाइम साइक्लिक है। आज हम सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, अब क्या हो गए, रात हो गई। रात के बाद क्या होगा, सुबह होगी। समय का चक्र है, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, विंटर के बाद क्या होगा, फिर से स्प्रिंग, चक्र है। इसी तरह एक बड़ा चक्र है, सृष्टि का सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम और सृष्टि की रात, जिसको कहते हैं सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कौन से युग में चल रहे हैं अभी, घोर कलयुग। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा, फिर घोर कलयुग के बाद क्या आएगा, सत्ययुग आएगा। आएगा या लाएंगे, आएगा या लाएंगे, राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा राम राज्य आएगा, पूरा देश खुश हुआ, सब ने कहा यस राम राज्य आएगा। काफी महीने हो गए, जनवरी में हुआ था ना, सितंबर शुरू होने वाला है। आएगा का मतलब कैसे आएगा, आएगा वो तो सर्टन है, लेकिन कैसे आएगा, कैसे आएगा। कलयुग किसने क्रिएट किया था, किस किसने कंट्रीब्यूट किया कलयुग क्रिएट करने में, फटाफट। अब सत्ययुग क्रिएट करने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, यस स्वास्तिक बनाइए माइंड में, स्वास्तिक बनाइए, सिंपल चार भाग। स्वास्तिक, द वर्ड मीन्स स्व का अस्तित्व, इट इज द जर्नी ऑफ द सोल, सात स्वास्तिक। पहला भाग, हाथ कैसे है, ऐसे ऐसे लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन, तो हैंड इज लाइक दिस। ये हाथ क्या कर रहा है, ये हाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है, देने वाला हाथ। इसको कहते हैं दुआओं वाला हाथ, देने वाला हाथ। और इसीलिए सत्ययुगी देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाते हैं, दो हाथ हो तो भी ऐसे, चार हाथ दिखाओ तो भी ऐसे, हमेशा देवी देवताओं के हाथ कैसे हैं, देने वाले, इसलिए उनको कहते ही देवी देवताएं हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म एक सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन जहां हर आत्मा कैसी थी। अगर आत्मा को बैटरी की तरह देखें तो सत्ययुग में बैटरी कैसी होगी, फुल्ली चार्ज्ड होगी। जब बैटरी फुल्ली चार्ज्ड होगी तो शरीर कैसा मिलेगा, अगर फुल्ली चार्ज्ड होगी तो शरीर कैसा मिलेगा, निरोगी कंचन काया। आज भी मंदिर में देवताओं की मूर्ति स्थापन नहीं की जाती अगर वो थोड़ी सी भी खंडित होती है। सत्ययुग में डॉक्टर्स, सत्ययुग में डॉक्टर्स बताइए, सत्ययुग में डॉक्टर्स नहीं होंगे, फिर आप नहीं आएंगे सत्ययुग में, सत्ययुग में आप नहीं आएंगे, आप आएंगे लेकिन डॉक्टर बन के नहीं आएंगे ना। हाँ, आत्मा आएगी सत्ययुग में, ये वाला रोल नहीं आने वाला ये। तो पहले सत्ययुग हाथ ऐसे है, ठीक है, आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट होगी सत्ययुग में। त्रेतायुग हाथ नीचे जाता है ऐसे, मतलब देना थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ, मतलब सोल पावर क्या हुई, थोड़ी सी कम हुई। द्वापर युग हाथ ऐसे हो जाता है। सत्ययुग और त्रेता युग में भगवान को याद करेंगे, आत्मा भरपूर, शरीर परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट, लाइफ परफेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, स्वर्ग, स्वर्ग में परमात्मा को याद करेंगे, नहीं याद करेंगे, नहीं याद करेंगे। खुद ही कैसे बन जाएंगे, खुद ही कैसे बन जाएंगे परमात्मा की तरह। इसीलिए देवी देवताओं को भी क्या मान के पूजा जाता है, ये भगवान है, इतने सारे देवी देवताएं हैं। देवी देवताएं बहुत सारे होते हैं, परमात्मा कितने होते हैं, एक होता है। तो देवी देवताएं अर्थात 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, परफेक्ट सोल। तो अगर गॉड 100% है, मतलब वाइब्रेशन ऐसे वर्ड देते हैं 100, तो देवी देवता क्या होंगे? अगर गॉड 100 है तो डेटीज देवी देवता क्या होंगे? 99। बस उतना ही फर्क। इसीलिए तो देवी देवताओं को किसकी तरह माना गया? ये तो क्या है? भगवान। वो देव आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कितने होंगे? सिर्फ एक। तो सत्युग त्रेता युग इज नॉट अ रिलीजन, सत्युग त्रेता युग इज अ सिविलाइजेशन। सनातन धर्म इज अ सिविलाइजेशन जहां हर एक डिवाइन है। द्वापर युग से धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस कम होने लगी। सत्युग में आत्मा को नेचुरल पता था कि मैं आत्मा हूं। द्वापर युग से सोल कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम होने लगी। तो जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस कम होने लगी, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो क्या आया आत्मा के अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पहला ट्रेस, आज वाला नहीं। सत्युग त्रेता युग में प्योरिटी, प्योरिटी, काम विकार सत्युग में नहीं होता। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना कि काम विकार शरीर की नीड है, काम विकार आत्मा की कमजोरी है। सत्युग त्रेता युग में कोई काम विकार नहीं होता। लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, ये कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। इसीलिए तो उसको विकारों की लिस्ट में लिखा हुआ है। द्वापर युग से जब बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू होता है, तो बॉडी का बॉडी की तरफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये सब स्टार्ट होता है। बट अभी वाला नहीं, 99 फीवर, उतना थोड़ा सा। और जब वो होता है, समाज थोड़ा सा बिखरने लगता है, तो परम धाम से बहुत पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आती हैं हमें सिखाने के लिए कि आत्मा का धर्म क्या है। कौन कौन आता है सृष्टि पर उस समय? द्वापर युग में कौन आया? कौन आया? श्री कृष्ण देवता है, 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। वो कौन से युग में आएंगे? वो कौन से युग में आएंगे? द्वापर युग से आते हैं। हर प्रॉफिट सृष्टि पर आया हमें क्या सिखाने के लिए? आत्मा का धर्म शांति है, प्यार है, सुख है, शक्ति है। वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म बनाने नहीं आए थे। तो इब्राहिम, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर क्या सिखाने आए थे? वी आर वन फैमिली, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। हर एक की उंगली कहाँ थी? ऊपर थी। हर एक हमें फिर से जोड़ने के लिए आया था, एक एक आया। लेकिन हमने कहा क्या? हमने टीचिंग को पूरी तरह से धारण करने की जगह हम टीचर से कनेक्ट हो गए। तो आपका टीचर मेरा टीचर अलग हो गया, और जब आपका टीचर मेरा टीचर अलग हो गया, तो आप और मैं क्या हो गए? अलग हो गए। वो आत्मा का धर्म सिखाने आए थे, हमने धर्म बना दिए। आत्मा का धर्म मीन्स ड्यूटी, क्वालिटी ऑफ द सोल। पानी का धर्म क्या होता है? शीतलता देना। आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति। समय बीतता गया। द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया? कैसे हो गया? ऐसे। सत्युग में हाथ कैसे था? ऐसे। द्वापर युग में प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे। ऐसे करते करते हम कलयुग में आ गए। कलयुग में हाथ कैसे हो गया? क्या कर रहे हैं कलयुग में? हाथ कैसे हो गया? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ये क्या कर रहे हैं? हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम सारा दिन? किसको मारते हैं हम सारा दिन? यहां सोच सोच के मारते हैं। अब एक बार हाथ पकड़िए ऐसा। ये कलयुग है। इसके बाद कौन सा युग आने वाला है? सत्युग। बस इस एक्सरसाइज को करो जरा, एक सेकंड। बस ऐसे करना है सारा दिन। ऐसे की जगह क्या करना है? ऐसे करना है। कोई भी बात आएगी, ऐसे की जगह क्या करना है? ऐसे करना है। कोई भी कुछ बोलेगा, ऐसे की जगह क्या करना है? ऐसे करना है। मारना मारना नहीं है, अपने आप को सोच के दुआ देना है, सत्योगी बन जाना है। तो ये विद्यालय, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज आपको डॉक्टर बनाता है, परमात्मा ने, शिव बाबा ने ये विद्यालय स्थापन किया मनुष्य को क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? सत्यनारायण की कथा किस किसने सुनी है? सत्यनारायण की कथा में कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। मतलब नर और नारी कोई ऐसी करनी करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नर और नारी मतलब मैं आत्मा कलयुग में, और श्री लक्ष्मी नारायण मतलब मैं आत्मा सत्युग में। तो नर और नारी ऐसा क्या करेंगे जिससे श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नर और नारी जो पूरा बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, उनको पूरा क्या बनना पड़ेगा? सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या चेंज लाना है? तो आज से वो जो 10 संकल्प लिखे थे उसमें सबसे पहले ऊपर एक संकल्प लिख लो, आई एम अ सत्युगी सोल। वापिस मंडे को कलयुग में ही जाना है, इसीलिए देवी देवताओं को कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। कमल पुष्प मतलब कीचड़ में है, लेकिन कमल पुष्प प्योरिटी का सिंबल है, क्योंकि उसके ऊपर कीचड़ टच नहीं होता है। हमें कलयुग में रहना है, लेकिन कलयुग में कैसे रहना है? कमल पुष्प की तरह देने वाली आत्मा। सत्युग कौन लेकर आएगा? अच्छा, अभी सिर्फ विजुअलाइज करना, परम धाम से आत्मा सृष्टि पर आती है, आत्मा बैटरी बिल्कुल चार्ज्ड है, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। एक कॉस्ट्यूम लेती है, फिर छोड़ती है, दूसरा लेती है। सत्युग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। 150 साल के बाद एवरेज एज स्पैन 150 ईयर्स, उस 150 साल के बाद आत्मा अपनी मर्जी से दूसरा शरीर लेती है, फिर तीसरा लेती है, फिर चौथा लेती है। अब इसको सिर्फ अगर विजुअलाइज करें, सत्युग में एक आत्मा ही शरीर छोड़ा लिया, 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 तो वो जो आत्मा इस सत्युग में थी आज वो कहां है? जो आत्माएं सत्युग में इस सृष्टि पे थी आज वो कहां है? कौन सी कुर्सी पे बैठी? रखो उंगली, रखो रखो। जो सत्युग में थी आज वो कहां है? दैट्स ऑल, इट्स सो सिंपल। कितना सिंपल है, मैं आत्मा क्या थी, मैं आत्मा क्या बन गई, और अब मुझे आत्मा को फिर से क्या बनना है। तो जब हम अपने जीवन में सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे, एक एक सोच को बदलेंगे, प्योरिटी शांति शक्ति इसको लेकर आएंगे, तो हम सृष्टि को क्या बना रहे हैं? हम सृष्टि को क्या बना रहे हैं? सत्युग बना रहे हैं। रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट। एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में आग लगी थी, बड़ी जोर से आग लगी थी। एक छोटी चिड़िया क्या कर रही थी? जाती थी सागर से चोंच में पानी भरती थी और आकर उस आग पर ऐसे डालती थी, फिर जाती थी भरती थी और ऐसे आकर डालती थी। तो किसी ने कहा, चिड़िया तुम क्या करती हो, ये चोंच भर पानी से थोड़ी कभी आग बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग लगाई। दूसरा, जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा। और तीसरा, जिन्होंने आग बुझाई। मेरा नाम किसमें होना चाहिए? मेरा नाम किसमें होना चाहिए? नहीं, ताली नहीं, डिसीशन दो। मेरा नाम किसमें होना चाहिए? मतलब मेरा कर्म कौन सा होना चाहिए? बाकी नाम किधर जा रहे? मेरा कर्म कौन सी साइड का होना चाहिए? तो जब हम वो वाइसेस क्रिएट करते हैं, हम आग लगा रहे हैं। जब हम वो वाइसेस हैं लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करते, तो हम आग को जलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जब हम उन गुणों को अपना कर्म बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम उस आग को क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। और जब हम सब मिलकर इस आग को बुझाएंगे, ये याद रखिएगा, सत्युग लाने के लिए सृष्टि की पूरी पॉपुलेशन ने बदलना नहीं है, नहीं बदलना है। एक बहुत छोटी परसेंटेज ऑफ लोग चाहिए होते हैं, जिसको टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। जब वो अपने आप को परिवर्तन करते हैं, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। ये समय जो अभी चल रहा है और जो आने वाला है, ये बहुत आसान नहीं होने वाला है सृष्टि के लिए। वो समय शुरू हो चुका है ऑफ द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पीरियड इज नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। इसीलिए आप देखो, इस समय सृष्टि पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सृष्टि पर बहुत अपहीवल होने वाली है। लेकिन हमें अपहीवल साइड पे फोकस नहीं करना, हमें किस पर फोकस करना है? हमारा रोल क्या है? एक मकान गिर रहा है, टूट रहा है, लेकिन साथ में नया मकान कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कौन सी साइड पर फोकस करना है? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। दुनिया कहती है प्रलय हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। कलयुगी जीवन जीने का तरीका खत्म हो जाएगा, कलयुगी संस्कार खत्म हो जाएंगे और सत्ययुगी दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। दुनिया नेवर एंड्स, इट इज अ साइकिल, इट विल ऑलवेज कंटिन्यू, इट्स अ रेपिटेशन, इट्स गोइंग ऑन, इट नेवर स्टॉप्स। दुनिया खत्म नहीं होती, प्रलय नहीं होती है, सृष्टि का विनाश नहीं होता है, कलयुगी जीवन जीने का फिनिश हो जाता है और सत्ययुगी जीवन जीने का तरीका स्टार्ट हो जाता है। तो रेडी, आपको पता है आप यहां क्यों आए? फिर आपको पता है आज आप यहां क्यों आए? माइंड बॉडी मेडिसिन तो सिर्फ एक नाम था, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए? क्या बनने के लिए? सागर से चोंच में पानी भर के सृष्टि की आग बुझाने वाले। कौन सा सागर है जिससे हमें पानी में चोंच भरनी है? कौन सा सागर है? तो हर बार जब हम परमधाम जाते हैं, परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरते हैं, अपने सोच को बदलते हैं, अपने संस्कारों को बदलते हैं, हम सिर्फ खुद को नहीं बदल रहे हैं, हम किसको बदल रहे हैं? हम सृष्टि को बदल रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है कलयुग से सत्ययुग, इसमें हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट सडनली ऐसे सामने आ जाते हैं। द्वापर युग से, कलयुग से कितने हम कर्मा करके आए हैं, इसीलिए अब अपनी पावर को इतना रखना है कि जीवन में कोई भी बात आ जाए कैसे रहना है, ये हाथ फाइनल करें। हर सोच कैसे रहनी है? दुआ देने वाली, ब्लेस करने वाली। इसीलिए वो कल वाला शाम का वोकैबुलरी सब लिख लेना। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए, बोलो सब अच्छा हो रहा है, सब परफेक्ट है, सब मेरे कल्याण के लिए है। रेडी ना कलयुग से सत्ययुग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना है वो है घर में आने वाला धन। चार फैक्टर्स होते हैं, धन, अन, मन, तन। चार डेस्टिनी है, धन, अन, मन, तन। पहला कौन है? धन। कलयुग कलयुग क्यों बना? क्योंकि धन कमाने का तरीका बदल गया। कुछ साल पहले तक भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जेनरेशन तक तो डेफिनेटली कितना कमाते हैं वो कभी प्रायोरिटी नहीं हुआ करता था। क्या प्रायोरिटी हुआ करता था? कैसे कमाते हैं, क्योंकि कितना कमाते हैं वो तो सिर्फ सामान लेकर आता है, कैसे कमाते हैं वो घर में सुकून लेकर आता है। इसलिए ध्यान रखना है, एथिक्स इन मेडिकल लाइफ कोई वर्ड होना नहीं चाहिए, ये शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स वर्ड जहां आया मतलब किसी भी प्रोफेशन में एथिक्स वर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन मेडिकल फील्ड में तो होना ही नहीं। हमेशा याद रखना, कोई संपूर्ण विश्वास के साथ आपके पास आया है, किसी ने अपना बच्चा आपको ऐसे सरेंडर कर दिया है, कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट सरेंडर। अब इसमें एथिक्स की बात कहां से आ सकती है? इसलिए एथिक्स को उतना ऊंचा बनाइए जो आज के डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल नहीं है, उससे ज्यादा ऊंचा। कितना ऊंचा? कितना ऊंचा? कितना ऊंचा? उतना। सब क्या कर रहे हैं वो नहीं, नॉर्मल क्या है वो नहीं, हाईएस्ट 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 प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो धन घर आने वाला है। तो धन किससे आना चाहिए? दुआओं के साथ आना चाहिए। जब कोई दर्द में हो तो दुआओं के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। तो जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, जो हर हॉस्पिटल में हो रहा है वो नहीं करना, छोड़ देना नौकरी लेकिन नहीं करना, छोड़ देना नौकरी। श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना जब कलयुग में, तो थोड़ा सा नाव हिलेगी, क्योंकि वी आर गोइंग टू गो अगेंस्ट द टाइड नाउ। मेजॉरिटी शायद उस तरफ होंगे और हमें इस तरफ जाना है। परमात्मा हमें एक बहुत अच्छी लाइन सिखाते हैं, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं, तो सच की नाव में बैठे रहना, कभी भी डूबेगी नहीं लेकिन हिलेगी डुलेगी। आसपास के लोग कुछ बोलेंगे, परिस्थितियां कुछ करेंगी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन डूबेगी नहीं, लेकिन वो सत्य की नाव आत्मा की शक्ति बन जाती है. तो थिंक अबाउट इट व्हाइल यू आर गोइंग बैक. आप सब बहुत एथिकल हैं, लेकिन उसको और एथिकल करने में और भी कर सकते हैं, और भी इतना इतना एथिकल करना है जो सत्युग काम करने का तरीका बन जाए. हाइएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल. इसका मतलब ये नहीं हम चैरिटी कर रहे हैं, हम धन कमा रहे हैं, लेकिन धन कैसे आना चाहिए, 110% ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि बहुत जल्दी समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं वो बदल जाएं और लोग फिर से संपूर्ण विश्वास रखने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि दैट इज नीडेड फॉर हीलिंग. चाहिए या नहीं चाहिए, वो चाहिए ना. यस, तो ऐसा एक पुरुषार्थ करें यहां से जाकर कि ये शब्द ही खत्म हो जाए. एथिक्स इन मेडिकल लाइफ कोई शब्द नहीं होना चाहिए. तो पहली चीज है धन. इसीलिए धन को लक्ष्मी जी के साथ कहा जाता है, श्री लक्ष्मी धन की देवी है. धन को देवी के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि धन दुआओं के साथ आना चाहिए, धन पवित्रता के साथ आना चाहिए. हाथ हमेशा ऐसे है, ऐसे देने वाला नहीं. दूसरा होगा अन्न. अन्न कैसा होना चाहिए, अन्न कैसा होना चाहिए, अन सात्विक. सात्विक मतलब सबसे पहली चीज है वेजिटेरियन. एक जिम्मेवारी उठाइए, समाज को बताना शुरू कीजिए कि तामसिक भोजन हेल्दी नहीं है. कहीं ना कहीं हमने ही उनको बताया ये हेल्दी है, इसमें प्रोटीन है, इससे ताकत मिलेगी. बोला ना हमने, ये आपका कर्म बनेगा, आपको चेक चेंज करना है इस कर्म को बहुत जल्दी. सब कहते, डॉक्टर बोलते हैं इससे शक्ति मिलती है, तो चेंज भी किसको करना पड़ेगा अब इस बात को, चेंज भी किसको करना पड़ेगा अब इस बात को, आपको ही करना पड़ेगा. कौन रेडी करने के लिए, ओपनली बोलने के लिए. बोलते जाइए, अपना पुण्य कर्म करते जाइए, करते जाइए. एक एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस कौन सी एनर्जी होता है, कौन सी एनर्जी होता है, हेट्रेड, फियर, एंगर, हेल्पलेसनेस, अग्रेशन, पेन, हर्ट, रो रहा है, चीखता है. वो स्लॉटर हाउस का एनवायरमेंट कैसा होता है, और उसको हम हेल्थ कहते हैं. फिर वायलेंस, फिर डेथ. डेथ की एनर्जी किसी को हेल्थ नहीं दे सकती, डेथ की एनर्जी प्रोटीन दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती. एनर्जी ही वो डेथ की है, हेल्थ की कैसे देंगे. सबसे पहली चीज ओपनली बोलना शुरू कीजिए. हॉस्पिटल में ही खिलाते हैं पिलाते हैं, कहते हैं इससे ताकत मिलेगी. वो एक हीलिंग सेंटर है, वो एक हीलिंग सेंटर है. उसमें दर्द वाला खाना कैसे खिलाया जा सकता है, नहीं. ये कुछ नई चीजें करनी है यहां से वापस जाने के बाद. अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, ऊपर उठाएं. कोई आपको बोलेगा हम आपके हॉस्पिटल में आएंगे, आप हमें वेजिटेरियन देंगे, तो हमें ताकत कैसे मिलेगी. बोलना हम प्रसाद खिलाते हैं यहां पर, हम दर्द वाला खाना नहीं खिलाते. प्रसाद खाएंगे ना जल्दी घर जाएंगे, जल्दी घर जाएंगे. कोई भी ये करके देख ले. दूसरा, अन्न बनाने का तरीका बिल्कुल शांति से होना चाहिए. जिस जिसका अपना हॉस्पिटल है या जो भी किसी हॉस्पिटल का हिस्सा है, सबसे पहले चेंज करिए कि रसोई के अंदर जो हॉस्पिटल में और घर में खाना बहुत शांति और स्थिरता से बनना चाहिए. लोगों के मन को शांत करना है ताकि उनका तन जल्दी ठीक हो जाए. वो रेस्टोरेंट नहीं है, हॉस्पिटल है. वहां का खाना जोर से बोलते हुए चिल्लाते हुए ऐसा खाना नहीं बन सकता है. वहां खाना प्रसाद की तरह बनना चाहिए, और हम सबके घर में भी खाना प्रसाद की तरह बनना चाहिए. आपके मन को जो शांति फील हो रही है ना, उसका आधा काम डाइनिंग हॉल में होता है, वो वहां हो रहा है, क्योंकि खाना कैसे बनाना है उस पर यहां बहुत ध्यान रखा जाता है. कौन बना रहा है और किस मनोस्थिति में बना रहा है. अगर किसी ने परेशान स्थिति में आपके लिए खाना बनाया, विद इन वन आवर आपके मन की हलचल शुरू हो जाएगी. इसलिए हॉस्पिटल में तो खाना ना खाइए, अपने घर से खाना लेकर आइए. पहली बात, घर से पानी की बोतल लाइए, घर से अपना खाना लाइए, और खाना खाने से पहले फिर से 5 सेकेंड रुककर उसकी वाइब्रेशन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए. और जिनका अपना अपना हॉस्पिटल है, वहां की रसोई को शांति और स्थिरता से बनाइए. रसोई के अंदर परमात्मा के भजन, मंत्र, गीत, कुछ भी शब्द, हाई एनर्जी वर्ड्स शुड बी इन द किचन. हाई एनर्जी वर्ड्स थ्रू आउट. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लंगर, भोग कैसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना, तो क्यों नहीं हम घर में नहीं बना सकते ऐसा? कौन कौन रेडी है अपने रसोई में रखने के लिए? रूल बना लो, आपका घर बदल जाएगा, लोगों का भाग्य बदलता है रसोई से। हमने देखा है परिवारों में जहां कोई स्टाफ खाना बनाता है, आजकल बहुत सारे घरों में एक महीना वो छुट्टी पे चला जाता है, उस घर की डेस्टिनी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी मनोस्थिति डायरेक्ट, इट इज लाइक अ डायरेक्ट असर। ये मनोस्थिति, इसीलिए सिखाते थे द वेट टू अ मैंस हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। खाना बना दो, मन जुड़ जाएगा उनके साथ। परिवार पहले जुड़े हुए क्यों थे? क्योंकि घर का खाना खाते थे और घर के लोग घर में खाना बनाते थे। अभी घर में बैठकर डब्बा ऑर्डर करते हैं बाहर से, और वो पैसा, वो जो खाना है, वो प्रॉफिट के लिए बनता है। उसमें प्यार, ब्लेसिंग, नर्चरिंग की एनर्जी नहीं है, उसमें प्रॉफिट, बिजनेस की एनर्जी है। और फिर आजकल तो वो 10 मिनट में नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल, तो उस पर गार्निशिंग कौन सी इमोशन की हो गई? स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी। खाना चाहिए ऐसे खाना? खाना चाहिए खाना जहां तक हो सके खरीद कर खाना नहीं खाना, खरीद कर खाना नहीं खाना। इसमें पैसे की एनर्जी के लिए खाना बने, नरिशमेंट की एनर्जी के लिए, हीलिंग की एनर्जी के लिए खाना बनना चाहिए। तो वो है अन्न। मन के लिए क्या करना है? सुबह सुबह परमात्मा की याद, मेडिटेशन, ज्ञान, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट धारणा कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। ये तीन चीजें हो गई, तन का हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, और हम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गए? कलयुगी लाइफस्टाइल से, कलयुगी लाइफस्टाइल से सत्योगी लाइफस्टाइल की तरफ। आत्मा को क्या करना है? सिर्फ सही संस्कारों से नरिश करना शुरू करना है, ये चारों एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखने से। कलयुग के अंतिम समय में एक चीज और है जो अचानक होने लगी है, और वो अचानक है, अचानक शरीर छोड़ना हो रहा है ना, अचानक अचानक। कोविड में हुआ अचानक, कोविड के बाद भी चल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना है, हम यहां पर ब्रह्मा कुमारीज में कभी मृत्यु वर्ड यूज नहीं करते, डेथ वर्ड यूज नहीं करते। नेचुरल हमारी वोकैबुलरी है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाती है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाती है? गर्भ में एंटर करती है। वो आत्मा जो शरीर छोड़ के आगे जा रही है, उसको किसके साथ भेजना चाहिए, कौन सी एनर्जी भेजनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में ये हो रहा है। यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, हाउ टू प्रिपेयर सोल्स टू लीव द बॉडी एंड व्हाट शुड बी डन व्हेन समवन लीव्स। आत्मा को कौन सी एनर्जी से भेजना है आगे? आत्मा को कौन सी एनर्जी से आगे भेजना है? बोलिए अच्छे से, कौन सी एनर्जी से आगे भेजना है? दुआओं के साथ, शुक्रिया के साथ, दर्द के साथ नहीं भेजना है। जब ये याद रहता है, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य आगे जाता है, मिस हम उनको करेंगे हमेशा, लेकिन एक होता है दर्द वाली याद और एक होता है शुक्राना और प्यार दुआओं वाली याद। कौन सी याद से भेजना है? क्योंकि आपकी सारी वाइब्रेशंस वो आत्मा गर्भ में कैच कर रही है, उनकी वहां डेस्टिनी पर वो इन्फ्लुएंस होती है हमारी वाइब्रेशन। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए अटैचमेंट क्या कहती है? मेरा क्या होगा? प्यार कहता है उनको क्या भेजना है मुझे, उनको क्या देना है मुझे। अगर कोई ऐसी स्थिति में है, हॉस्पिटल में होता है ना, आईसीयू में, बॉडी तो अब कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रही, इट्स नो, उस समय सिखाना है फैमिली को कि स्ट्रिंग्स को क्या करो, स्ट्रिंग्स को क्या करो, रस्सियों को क्या करो, क्या करना चाहिए। हमारे पास सेंटर पर एक बहन आती है, उनको कैंसर हुआ, उनका कीमो चल रहा था, उसके बाद उसकी डॉटर को कैंसर हो गया, फिर लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, वो लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिख रहा था कि अभी ठीक नहीं हो सकती है, डॉक्टर ने भी बता दिया। वो एक बुजुर्ग माता जी है, उसने क्या किया, परिवार वालों को इकट्ठा किया उस डॉटर का हस्बैंड, फादर, ब्रदर, बेटा, चार और एक ये छोटी सी बुजुर्ग माताजी। तो वो माताजी उनको बोलती है मेरी बेटी बहुत दर्द में, हमें उसको छुट्टी देनी है, क्योंकि वो रोज मुरली क्लास आती है ना, रोज सुनती थी, लेकिन पावर है, ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो मदर है उस बच्चे की। कहती हमें ना उसको छुट्टी देनी है, वो इस शरीर में सफर कर रही है। सब नाराज हो गए उससे, वहां जाती है सुबह सुबह कैसी कैसी बातें बोलती रहती है। तेंची से ठीक है मुझे उसके साथ बैठने दो, आप जाओ। वो बैठी, हाथ पकड़ा, मेडिटेशन किया, उसके साथ बातें की। आत्मा को निश्चिंत करो, आप चिंता मत करो, हम सब पीछे ध्यान रखेंगे सबका। आत्मा को बताओ आपका ये शरीर काम का नहीं है, आपका नया शरीर आपके लिए तैयार हो चुका है। कोई कोमा में भी है ना, उसको हर थॉट कैच होती है, हर थॉट, वर्ड नहीं, हर थॉट भी कैच करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट वो उसके साथ ऐसे बैठे और 15-20 मिनट में वो आत्मा शांत होकर उठ गया। एंड ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत बार होता है, क्योंकि हर आत्मा उस बॉडी में सिर्फ वेट कर रही है कि कब हम उस आत्मा को क्या करेंगे, छुट्टी देंगे। लेकिन हम क्या बोल देते हैं, आपको नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, आपको यहीं रहना है। यहीं रहना चाहिए या आगे जाना चाहिए? जब ऐसी स्थिति हो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहीं रहना चाहिए या आगे जाना चाहिए? उस आत्मा को क्या होना चाहिए? इसीलिए हमेशा सोचना उनके लिए क्या अच्छा है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि हमें नहीं पता कि ठीक होंगे या नहीं होंगे, कैसा चल रहा है, तो एक ही थॉट क्रिएट करना उस समय, ना खींचने की थॉट क्रिएट करना, ना जाने की थॉट क्रिएट करना, एक ही थॉट क्रिएट करना, उस आत्मा के लिए जो सही है वो ही होगा। इतना थॉट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या बोलेंगे? उस आत्मा के लिए, मतलब फॉर दैट सोल व्हाट इज गुड, नॉट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज गुड फॉर देम। अटैचमेंट क्या करती है? हाथ ऐसे। प्यार क्या करता है? हाथ ऐसे। व्हाट इज गुड फॉर देम, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिसमें माइंड को बहुत पावरफुल रखना है। और आईसीयू में तो ये बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत है, ये सिखाने की जरूरत, ये कोई भी कर सकता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले आईसीयू में थी, किसी ने कहा मेरे फादर को आके देखो ना, वो ठीक नहीं, आप ब्लेसिंग देकर जाओ। दिख रहा था, मैंने वो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या? कहते हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है अभी। तो मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कहते मैं चाहती हूँ वो शांत रहे। मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है, दैट ही शुड बी एट पीस? शी सेड डोंट टॉक लाइक दिस टू मी। आई सेड आई एम नॉट टॉकिंग, यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। एंड देन क्या किया? शी सेड बताओ क्या करना है। सेड हाथ पकड़ो, बात करना शुरू करो। उसने हाथ पकड़ा, रोती गई, लेकिन उसको जो बोला वो बोलती गई। तो मैं बोला बोलो, हमारी चिंता नहीं करना, हम ध्यान रखेंगे सबका। अपने काम की चिंता नहीं करना, हम ध्यान रखेंगे सबका। आपका ये कॉस्ट्यूम काम का नहीं है, पूरा खत्म हो चुका है, आपको हमारे लिए यहां नहीं रहना है। आपका एक बहुत ब्यूटीफुल नया कॉस्ट्यूम रेडी हो रहा है। रोती गई, बोलती गई, रोती गई, बोलती गई। उसके बाद 2 घंटे के बाद उसने जाके डॉक्टर को बोला, डॉक्टर हम घर में लेके जाने के लिए अब रेडी है। तैयारी हो ही रही थी, वो आत्मा जो उस शरीर में 1 महीने से थी आईसीयू में, घर जाने से पहले उस दिन रात को 9 बजे वो आत्मा चली गई। इट इज ओनली दैट। लेकिन हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग टू द सोल। तो जब आत्मा आत्मा याद रहता है ना, लाइफ सिर्फ इजी नहीं हो जाती, जाना बहुत इजी होता और जाने देना बहुत इजी हो जाता है। द आर्ट ऑफ डाइंग एंड द आर्ट ऑफ लेटिंग अदर पीपल लीव विद डिग्निटी बिकम्स वेरी सिंपलर टू डू। याद हमेशा करेंगे, लेकिन डिग्निटी से भेजना है। ठीक है, तो हर कर्म कैसा होना है, जाते समय भी कैसे जाना है, ऐसे। कोई जा रहा है तो भी उसको कैसे भेजना है, ऐसे। और जी रहे हैं तब भी कैसे जीना है, ऐसे। तो क्या बन जाएंगे? सत्योगी आत्मा। चले 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बिल्कुल इसी साइलेंस में रहेंगे, क्योंकि आपको अभी गिफ्ट मिलेगी यहां से, जो कि बहुत साइलेंस में होगा। आप एक एक करके स्टेज पर आएंगे, गिफ्ट लेंगे और फिर साइलेंस में भोजन के लिए चलेंगे। उन्हें प्यार और शक्ति के साथ अपने हिसाब किताब को फेस करने की ताकत देना। पेरेंट का रोल, बच्चे को शक्ति देना। आज से मेरा हर कर्म देने वाला, हर संकल्प हाईएस्ट वाइब्रेशनल कर्म। जो परिस्थिति दिख रही है वो नहीं सोचना, हाईएस्ट कर्मा बॉल फेंकना है। मैं सत्योगी आत्मा, मैं दिव्य आत्मा,